नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में। डिप्रेशन क्या ये कोई बीमारी है या फिर हमारे मन का वहम? क्या डिप्रेशन मुझे आपको हो सकता है? क्या डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, या हम ऐसे ही डिप्रेस्ड फील करते हैं? ज़रा सा लो हुए तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल के रूप में कभी ना कभी हमारे दिमाग में उपजती हैं और फिर उसके सोल्यूशन भी तलाशने की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में हमने ये जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह के इलाज पॉसिबल हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइकोथेरेपी से हो, या फिर कई बार जब ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। किस तरह के ये इलाज हैं, आज इस पर कुछ और चर्चा करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका स्वागत।
नमस्कार।
नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात, वो ये थी कि तीन तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो डिप्रेशन की इस वक्त संभव है। उसमें सबसे पहले आपने बात की थी ड्रग्स से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी है। कई मिथ्स हमने दूर की थी जो ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, कि दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं तो इट कैन एक्चुअली सीवियर केसेस में लीड टू सुसाइड ऑल्सो। सो इतना ज़रूरी हो जाता है ड्रग्स या दवाई लेना। आज थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलिए, आपने कहा था कि 2.5 से 3 महीने तो क्लिनिकली बहुत ज़रूरी ही है, उसके बाद क्या हमें लाइफ लॉन्ग ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है, या हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं, हम ठीक हो गए हैं?
लाइफ लॉन्ग तो लेने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, किसी भी डिप्रेशन में नहीं,
लाइफ लॉन्ग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो गलतियां हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि भी क्या गलती हम करते हैं। वास्तव में जैसे कहा कि उसे हर 5-6 दिन में मेडिसिन को बढ़ाते बढ़ाते एक क्लिनिकल डोज पर आना पड़ता है कि जब केमिकल जो इम्बेलेंस हुआ है वो ठीक होने लगे, और वह जब एक क्लिनिकल डोज पर आ गए फिर 2-2.5 मास में उसकी परफेक्ट इफेक्ट हो जाती है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए। अब अच्छा साइकेट्रिस्ट है उसे कम करना प्रारंभ करेगा कि हर 20 दिन या 1 मास में थोड़ी थोड़ी वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, और फिर एक छोटा सा डोज जिसे मेंटेनेंस डोज कहा गया है वो तो बहुत ही मामूली होता है। वो एकदम जो मामूली डोज है उसे कम से कम 1 साल लेना चाहिए।
अच्छा, ये जो जब हम इस पे पहुंचेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा? वो 6 महीने भी हो सकता?
नहीं,
है
वो करीब 2.5 मास वो होने, वहां तक पहुंचेंगे 15-20 दिन में पहुंचेंगे, फिर 2.5 मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए। बोले कुछ ऐसे किस्से हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की जरूरत पड़े, परंतु अगर आप सचमुच रिलीजियसली साइकेट्रिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो यह एक जो सिस्टम है वो काफ़ी है। अब गलती कहाँ होती है कि एक तो पेशेंट अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं, और जैसे ही आपको पता चला ना कि भई ये साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन ले रहे हैं, कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ है ना, वो क्या कहते हैं कि भई ये विधि करा लो, फलाना भुआ है वो ये विधि करता है उससे ही तुम। और देखा है मैंने 60-70% लोग 8-10 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दे। फिर सेकंड अटैक आता है तो फिर से जाएंगे साइकेट्रिस्ट।
अच्छा, सबसे बड़े फख्र से ये कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद कर दी, मतलब मुझे, मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हुए
है। और जब अभी सेकेंड अटैक आए तो सेकेंड अटैक में अब ठीक होना मुश्किल है, फर्स्ट से सेकेंड में ज्यादा मुश्किल है, थर्ड में और मुश्किल है, और अगर फोर्थ अटैक आ गया तो फिर तो बस फिर 90% ठीक नहीं हो सकते।
अटैक मतलब
मतलब रिपीट हो, जिसको कहें ना कि रिलैप्स कहेंगे, कि भी एक बार आप डिप्रेस हुए, आपने कुछ समय मेडिसिन ली, थोड़े अच्छे हुए, आपने छोड़ दी कोई भी कारण से, 10-15 दिन के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो गए, फिर से साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने और कुछ मेडिसिन दी और फिर से आप ठीक हुए, फिर से आपने कुछ समय ली उसको छोड़ दी, और ऐसा अगर जिसको रिलैप्स भी कह सकते हैं कि दोबारा बीमारी होनी,
लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट क्या है डिप्रेशन के? एक्चुअली हम ये तो मान लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम अगर आ गई, हार्ट की हम दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाई रिलीजियसली लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर है उसकी सुबह उठ के दवाई ले लेंगे, थायराइड है उसकी दवाई लेंगे, लेकिन डिप्रेशन की दवाई क्योंकि हम उसे लॉन्ग टर्म उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या फिर फिजिकल इम्पैक्ट इतने शायद नहीं नज़र आते हैं, तो वो इम्पैक्ट क्या है अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं? ये बार बार अटैक्स जो आएंगे, हाउ विल इट यू नो इफेक्ट माय बॉडी?
डिप्रेशन में जो हम अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो एक तो वह बीमारी है वह लंबे समय तक चलेगी, उसके अंदर विकृति भी आ सकती है जिसको कहा है डिप्रेसिव साइकोसिस, कि पागलपन भी आ जाए, डिप्रेशन के साथ साथ भी पागलपन की जो और भी बुरा है, और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह सुसाइड तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसके कारण ठीक से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है।
तो लाइफ के ऊपर भी एक्चुअली अगर हम शिवानी देखें तो कभी जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम इसलिए दवाई खाते हैं कि हमें पता है भाई हमारा दिल रुक गया तो सब रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लाइफ के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर
और बीमारियां भी जो आपने बताए ना कि भी अगर लंबा समय डिप्रेशन चले तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ सकती है, लंबा समय डिप्रेशन चले डायबिटीज हो सकता है, नहीं बैक के प्रॉब्लम, कैंसर तक हो सकता है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं लंबा समय। तो उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जो सेफ है वो हमें ठीक से करना
I
बहुत आवश्यक है।
That is very important.
क्योंकि सिंपल बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी ना,
और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी,
मतलब आपने और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी जिसके कारण नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन भी एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, तो स्ट्रेस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाएगी।
स्ट्रेस आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, हमने जब कारणों की बात की थी तो जो लाइफस्टाइल हमारा है इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है।
ये विशेष सर्कल है कि स्ट्रेस डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन से आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे थे कि जब इलाज कर रहे हैं आपने 2.5 से 3 महीने तक अपना एक प्रॉपर क्लिनिकल डोज ली उस लेवल पे लिया, उसके बाद आपने कहा था कि धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना, कई बार लगता है कि 0.25 mg की गोलियां ना ही लो तो चलो रहने देते हैं, यू नो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि 0.25 mg तो यही होगा ना, इतना ही होगा छोटा सा, तो क्या वो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना, जिसे आप कह रहे हैं कि सर्वाइविंग के, मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए?
एक तो क्योंकि वो केमिकल्स को मेंटेन करना है, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए,
अगर हो जाए
तो क्या होगा कि केमिकल आपके स्लोली बिल्ट अप हो रहे, आपने एक दिन नहीं ली फिर से डाउन आ गए, तो फिर से उस केमिकल को बिल्ट अप करने को और आपको ज्यादा टाइम लगे,
नहीं तो फिर अगले दिन डबल डोज तो ना ले?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
ये दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल,
दैट इज वेरी रॉन्ग राइट ना, फिर उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। ये संभव है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि भी सोने से आधा घंटा पहले आप मेडिसिन को लेना, बाई चांस आप भूल गए, आपको रात को 2 बजे याद आया, तो बोले 2 बजे भी ले लो, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो केमिकल्स की जो पॉजिटिव इफेक्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव इफेक्ट स्लोली होगी,
तो अगले दिन फिर उसी टाइम पे लेना चाहिए?
हाँ, उसे फिर उसी टाइम पर ले हम, और मिस ना करे, डबल डोज तो बिल्कुल नहीं लेना है, दैट विल बी स्टिल मोर हार्मफुल। और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े, सबसे अच्छा था कि डॉक्टर को डिसाइड करने दो, आप अपने डॉक्टर नहीं बनो, फिर भी एक जनरल आइडिया जो देना मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको बिल्कुल अच्छा हो गया, 2.5-3 महीने तक सचमुच आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, एकदम नॉर्मल हो गए, आपको लग रहा है जैसे मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कि भी हर मास में या 20 दिन में स्लोली वो डोज को कम करते हैं, और एक जो फिर मेंटेनेंस डोज आएगा वह मेंटेनेंस डोज कम से कम 1 साल लेना चाहिए। और फिर भी एक तो एक्सपेरिमेंट करना है वास्तव में, कुछ लोगों को और भी 2-3 साल भी आवश्यकता हो सकती है, कि तब हम छोड़ सकते हैं,
तब वो बहुत मिनिमल होती है।
और उसके बीच में फिर और चीजें भी करो, जैसे मेडिटेशन करो, है ना, जीवन शैली को परिवर्तन में लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो,
साइकोथेरेपी विल हेल्प। डॉक्टर साहब, आप ड्रग्स को तो हमने काफी डिटेल
में जाना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो लोगों में मिथ है और कई लोग पूछते हैं ये कि भी क्या मेडिसिन कभी बंद नहीं हो सकती है, तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी मेडिसिन जरूर बंद करो, ठीक से लो और फिर बंद करो। अंत में थोड़े समय दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर, लेकिन फिर वह हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो एडजस्ट हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड एज का जहाँ सवाल है, मैंने कहीं देखे जो बूढ़े पेशेंट है 70 इयर्स के 75 इयर्स के है, मेडिसिन लेने से वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर एक भूत सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है, तो उनको मैं कई बार कहता हूँ कि भी कितना जीना है अभी आपको, अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना।
अच्छा, और सबसे बड़ी बात, खुद को भी तो नहीं पता होता कि हमने कितना लंबा जीना है अभी।
सोच भी लो, और सिर्फ मेडिसिन की जो थोड़ी सी इफेक्ट है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, कि जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज है, इनोवेटिव पावर्स है, हो सकता है कि सब मेडिसिन ने कुछ मेडिसिन की इनोवेटिव पावर्स क्रिएटिव एबिलिटी पर थोड़ी सी 5-10% इफेक्ट हो सकती है। इसलिए यूथ को एडवाइस देंगे कि आप इसके थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए और प्रॉपर उसका जो रूट कॉज है वो भी दूर करना चाहिए। रूट कॉज दूर हो गया तो फिर वो मेडिसिन को बंद करने में मुश्किलात नहीं होगी।
आपने जब कहा कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, वो
अगर आवश्यकता है, ये भी नहीं, अगर वो छोड़ सकते भले छोड़िए, लेकिन आप समझते हैं छोड़ने पर आपको सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और मेडिसिन से आप एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो स्मॉल डोज में लेने में आपको डिफिकल्टी।
यहाँ लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन ये चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन में हैं और ऐसे में हम कोई योगा या मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे हैं कि वो दैट रियली हेल्प्स, वहाँ पर जाते भी योगा करते हुए खासकर या इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में जाने के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब तो हम ठीक ही हो जाएंगे ये सारी क्रियाएँ करके, क्या वो छोड़ना चाहिए?
नहीं नहीं, बहुत अच्छा कनुप्रिया जी, एकदम पावरफुल प्रश्न है आपका, जिसको मैं कहता हूँ फीलिंग गुड। जब व्यक्ति योग आसन आदि करता है ना, उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूं, तो वह डेंजरस चीज है। ये केमिकल्स एकदम कम हो जाएंगे और सीरियस प्रॉब्लम होगा। छोड़ भी आप सकते हैं, एक बार आपने अगर प्रॉपर जो ड्यूरेशन महीने का 3 महीने का ड्यूरेशन वह दवाइयाँ ले ली आपने, आप एकदम नॉर्मल है, फिर जो मेंटेनेंस डोज आपका है वो भले दूसरे पेशेंट को हम कहते हैं 1 साल के बाद बंद करो, आप ट्राई कर सकते 6 मास के बाद भी करो, अगर आप उससे आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए और तुरंत लो, फिर रुको नहीं।
कई बार
फिर से डिप्रेशन सेट हो जाए तब तक रुको नहीं।
कई बार सेंटर पे भी कुछ भाई बहने आते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन करने से अच्छा लग रहा है, तो मेडिटेशन यू नो मेडिटेशन करने के बाद दवाई अपने आप छोड़ देते हैं, वो भी शायद खुद नहीं छोड़नी चाहिए ना,
डॉक्टर को पूछ को ही।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंसेस क्रिएटेड हैं, इवन इफ वो मेडिटेशन से अगर ठीक हो रहे हैं तभी वो इम्बैलेंस तो है,
लेकिन फिर भी एक ट्रीटमेंट तो फिनिश कर लेनी चाहिए ना। तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप डॉक्टर जैसे
एडवाइस से ही करिए,
जैसे कि आपने कहा था कि साइकियाट्रिस्ट जो जो आपका डॉक्टर है उस पर 100% फेथ रख के ही हमें अपना इलाज कर, जैसे हम अपने हार्ट के डॉक्टर हैं या हमारे कोई और प्रॉब्लम चल रही है, इवन जनरल फिजिशियन है उसके ऊपर भी तो 100% फेथ रखते हैं, वो कहते हैं इतनी एंटीबायोटिक खानी है, इतनी चाहे कितनी भी हालत खराब हो आप वो 5 दिन का कोर्स खत्म करेंगे ही। आई हैव सीन रियली यू नो पीपल दे सेइंग कि आपको 5 दिन की दवाई खानी है, चाहे आप बीच में ठीक हो जाएं, लेकिन वो 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना ही है, और आई थिंक वो हर कोई करता है, तो फिर इसको भी पूरे कोर्स को करना ज़रूरी हो जाता है। एक और मिथ, आज हम मिथ्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर डिप्रेशन जो जैसा मुद्दा है उसमें जब यंगस्टर्स में डिप्रेशन की बात आती है तो चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के, पेरेंट्स के दिल में एक बहुत ये, क्योंकि हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, तो यू नो चाहे वो अभी इलाज कर रही है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके यू नो मैरिज के बाद कंसीव करने में प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हम ये चाहते हैं दैट हाउ डज इट रियली इफेक्ट,
ये भी मिथ ही है वास्तव में, बल्कि कुछ मेडिसिन इफेक्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ मेडिसिन इफेक्ट कर सकती है, प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन नहीं देनी है तो डॉक्टर जानता है
वो तो उस वक्त पे है ना कि जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेडिसिन नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई बच्ची या जो व्यक्ति है वो कॉलेज में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो डिप्रेशन
तो कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में मेडिसिन देनी ही चाहिए, और अगर कोई थोड़ी सी साइड इफेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी नई दवाइयां हैं जो डॉक्टर उसको चेंज भी करेंगे,
और लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होते ना।
और यूथ में तो देनी चाहिए, क्योंकि यूथ में कई बार सिम्टम्स अलग प्रकार के होते हैं, और इसके कारण यूथ में अगर उनको जरूरत है तो सही ड्यूरेशन के लिए अवश्य ही उनको हम दवाइयां दे। और एक मिथ है वास्तव में, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं।
तो चलिए, ये पूरा एक यहाँ एक ये कंप्लीट चैप्टर ये होता है कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड पर अगर डिप्रेशन में हैं आप, और कुछ देर के लिए ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग टर्म ही करना है। मेंटेनेंस के लिए अगर साल भर है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके बाद हम एक बेहतर ज़िंदगी, जो एक बोझ लेके हम डिप्रेशन का चलते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम शॉक की बात करते हैं कि शिवानी बहन ने भी उस टाइम पे, उस वक्त जब बात हो रही थी कि शॉक ट्रीटमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स या कन्वर्जन्स जिसे कहते हैं, जो दिया जाता है फिल्मों में अगर हम देखें तो वो एक सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, किसी को टॉर्चर करना है तो शॉक्स दिए जाते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट दे बिकम एट टाइम्स।
सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करूँ, ये शब्द बड़ा डरावना है और ये शब्द सही भी नहीं है, नहीं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो इसका नाम है, जिसको कहा है ECT, है ना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कि जैसे हमको फिट्स आते हैं, किसी को कन्वल्जन्स आते हैं नेचुरली, वह इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किए जाते हैं और उसके द्वारा ट्रीटमेंट होती है। एक तो कि भी वह रेयर है, आज वर्तमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं कि वह रेयरली आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे कि भाई 1000 या 2000 पेशेंट में एकाध किसी को उसकी आवश्यकता पड़े, बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। और अच्छा साइकेट्रिस्ट पहले तो सभी दवाइयों का प्रयोग करेगा, अगर एक नहीं हुई तो सेकंड जनरेशन की अच्छी दवाइयाँ हैं, थर्ड जनरेशन की है उसका भी प्रयोग करेगा। और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वो ECT का सहारा लेगा। और दूसरा एक होता है कि भी जिसमें सीरियस सुसाइडल टेंडेंसी है, कि भी किसी भी क्षण ही आत्महत्या कर लेगा, और ऐसे किससे हुए हैं, यहाँ तक कि वो साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में गए हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, पेशेंट ऊपर टेरेस में गया, उसने जंप लगाई। तो जहाँ पर ये पता है कि भी इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहाँ कुछ किस्सों में ECT कार्य कर सकती है। और अब ये जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे आपने वो शॉक ट्रीटमेंट, और लोग डरते हैं उससे, अब जो ये ट्रीटमेंट दी जाती है, पहले तो मैंने कहा रेयर है, इट्स मे बी 1000-2000 पेशेंट में एकाध को जरूरत पड़े। और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं, ऐसे एनेस्थीसिया देने के बाद, और अब जो नए मशीन्स आए दे आर सो सेफ, कि जिसमें जो कन्वल्जन्स भी है ना, देर आर डिफरेंट वेज ना, इट्स अ टेक्निकल थिंग्स के शायद सब समझ नहीं पाएंगे, तो दे आर रियली रियली सेफ। तो अगर आवश्यकता हो तो उसका भी पूरा सेट होता है, कि हमें अराउंड 8 ECTs की अधिकतर आवश्यकता पड़ती है, तो उस अनुसार वह भी जो डिप्रेशन के पेशेंट में ज़रूरत है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बोले आप दूसरा भी ओपिनियन ले लो, आपको यह लग रहा है कि भी आपके डॉक्टर ने सही सब मेडिसिन्स का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं, तो दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, वह भी समझता है कि यह सब दवाइयों का प्रयोग किया गया है।
इसमें क्या होता है, जैसे हमने ड्रग्स की जब दवाइयाँ ली तो हमें पता चला कि केमिकल इम्बैलेंस था, तो वो बैलेंस करने के लिए उसको कम्प्लीट करते हैं, दवाई ली जाती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस है, इसमें क्या होता है, क्या चेंज आता है?
ऐसा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक बात भी 100% पता नहीं, परंतु फिर भी इसमें जो दो बातें होती है, कि भी केमिकल्स में भी परिवर्तन आता है, और दूसरा एक जो फायदा होता है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव मेमोरीज है ना, वो व्यक्ति भूल जाता है, स्ट्रेस की मेमोरी, सर्टन ट्रॉमास, एब्यूज, समथिंग नो विच माइट हैव ट्रिगर्ड, कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी अगर हिस्ट्री को हम देखें ना, तो ECT की शुरुआत वास्तव में पागल पेशेंटों के लिए हुई।
यही मैं इस पे आने वाली थी कि क्या डिप्रेशन लीड्स टू मैडनेस आल्सो एट टाइम्स?
इट कैन,
वायलेंट जब हो जाता है तो,
यानी वायलेंट हो या तो वो ज्यादा समय रहे, हमने आगे डिस्कस भी किया था कि डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, तो वो डिप्रेसिव साइकोसिस में मैडनेस होगा। मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ कि जो शुरुआत हुई ECT की, वो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए हुई, जो पागलपन के पेशेंट्स हैं उनके लिए हुई, परंतु फिर कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी दिया गया और देखा कि सबसे फायदा इनको हो रहा है, पेशेंट एकदम नॉर्मल हो रहे हैं। और इवन मिरेकल्स हो सकते हैं कि जिस पेशेंट को आपने एक साल तक दवाइयाँ दी, अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टरों ने प्रयोग किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, और उसको आपने 4 ECT दिए, एकदम मिरेकुलस एकदम वो नॉर्मल हो गया।
डीप डिप्रेशन में जो गए हुए लोग,
या तो जिनको आवश्यकता है कि भी उसके सुसाइडल थॉट्स एकदम खत्म हो गए, जैसे लगा जादू हो गया। तो रेयर किस्सों में अब ये जजमेंट लेना चाहिए कि भी कहाँ पर आवश्यकता है, तो देने में हर्जा नहीं,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैड मेमोरीज को सप्रेस कर देता है, निगेट कर देता है, डिलीट कर पाता है। अगर कोई हम मेमोरी में जाके उन मेमोरी अपनी मेमोरी बॉक्स में जाके उन बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाए, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो है साइकोथेरेपी।
बिल्कुल
विचारों का जो जनरेट, जो बेसिक अगर हम कहें कि जहाँ से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दें, वहीं बदलाव ले आए,
तो
वो हमारा आपके साथ और आपके साथ ज़रूर उस पर डिटेल में और डीप जाने की ज़रूरत है कि क्या होगा वहाँ पे। लेकिन अभी समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू में पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइकोथेरेपी में किया क्या जाता है।
अच्छा, अलग अलग प्रकार की साइकोथेरेपी है वास्तव में, जो शुरुआत हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं, जिसको कहा साइको एनालिसिस, कि सेगमेंट फ्रॉइड ने इसकी शुरुआत की, और वो सारी उसकी थियरी है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कई ऐसी बातें हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बीमार करती है, जिसको कहेंगे चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स। उनकी अपनी एक सारी पर्सनालिटी की थियरी है, तो फ्रॉइडियन थियरी थी। फिर उसमें भी बदलाव आया, यूंग ने उसमें परिवर्तन करके एनालिटिक साइकोलॉजी नाम दिया उसका, और भी कई एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वो जो थेरेपी थी उसमें कुछ कुछ चेंज करते लाए। फिर एक जो दूसरी थेरेपी प्रीडोमिनेंटली यूज़ होती है, जिसको कहा बिहेवियरल थेरेपी, कि हमारे बिहेवियर में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया, कि जो भी कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होती थी। और अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जिसको कहा है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना, क्योंकि विचारों में मूड है, और ये जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज़्यादा संबंध नहीं, अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो उन मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे। प्रयोग भी हुए हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सिस्टर शिवानी, इनफैक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे, ये कि विचारों में परिवर्तन, डॉक्टर साहब ने कहा वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसमें मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकती है, पूरा जो हमारा पूरा
पूरी तरह से शायद है ना। मेडिटेशन में भी अलग प्रकार होती है ना, जैसे आजकल बहुत सारी मेडिटेशन हम देखते हैं, तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जो बॉडी के ऊपर फोकस्ड हैं, ब्रीदिंग टेक्निक पर, एंड कोई आसन को भी योगा कहते हैं। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट स्पेसिफिकली इट डील्स ओनली विद द माइंड, तो हाँ ओनली विद द माइंड, एंड फिर माइंड थॉट्स चेंज होंगी तो एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। तो राजयोगा मेडिटेशन ब्रिंग्स अबाउट एन एटीट्यूडनल चेंज, यू नो इट्स नॉट फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग और फिजिकल पोस्चर, वो पूरी तरह से मन और संकल्पों के ऊपर केंद्रित है, तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहें हम अपने विचारों में ला सकते हैं।
बिल्कुल, तो साइकोथेरेपी एक वो थेरेपी है जो कहीं ना कहीं पूरे बदलाव की तरफ, सिर्फ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा,
जिनको मामूली डिप्रेशन भी
है, मुझे लगता है हम में से हर एक को, मुझे तो होगा ही, इतनी सारी बातें मैं समझ रही, तो ये हम जो है अपना सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल में आने वाली कड़ियों में हम ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल और सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए। आज जो हमने जाना कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन लेना, और उसके अलावा जो आपने ECT के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक्स न रह के डिफरेंट तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार यूज़फुल हो जाता है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, बहुत सी बातें आपके पास भी होंगी, आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से साइकोथेरेपी को हम अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हैं, किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बातें करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही एनालिसिस करके अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएँ, हो सकता है ये पॉसिबल हो, आने वाली कड़ियों में इन्हें ज़रूर तलाशेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप हमें फ़ोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रयास जारी रखेंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।